نحمیہ نواں باب۔ پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے اور اسرائیل کی نسل کے سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ تب قدمیل یشو اور بانی اور سبنیاں اور سبنی اور سربیا اور بانی اور کینانی نے لاویوں کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے خداوند اپنے خدا سے فریاد کی۔ پھر یشو اور قدمیل اور بانی اور حسبانیہ اور سربیا اور ہدایا اور سبنیاں اور فتھایا لاویوں نے کہا، کھڑے ہو جاؤ اور کہو، خداوند ہمارا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہے، تیرا جلالی نام مبارک ہو جو سب حمد و تعریف سے بالا ہے۔ تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے، اور آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا اور اسے کسدیوں کے اور سے نکال لایا اور اس کا نام ابراہام رکھا۔ تو نے اس کا دل اپنے حضور وفادار پایا، اور کینانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرضیوں اور یبوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک دینے کا عہد اس سے باندھا، تاکہ اسے اس کی نسل کو دے، اور تو نے اپنے سخن پورے کیے، کیونکہ تو صادق ہے، اور تو نے مصر میں ہمارے باپ دادا کی مصیبت پر نظر کی اور بحر کلزم کے کنارے ان کی فریاد سنی، اور فرعون اور اس کے سب نوکروں اور اس کے ملک کی سب رعیت پر نشان اور عجائب کر دکھائے، کیونکہ تو جانتا تھا کہ وہ غرور کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ سو تیرا بڑا نام ہوا جیسا آج ہے، اور تو نے ان کے آگے سمندر کو دو حصے کیا، ایسا کہ وہ سمندر کے بیچ سوکھی زمین پر ہو کر چلے، اور تو نے ان کا پیچھا کرنے والوں کو گہراؤں میں ڈالا، جیسا پتھر سمندر میں پھینکا جاتا ہے، اور تو نے دن کو بادل کے ستون میں ہو کر ان کی رہنمائی کی، اور رات کو آگ کے ستون میں، تاکہ جس راستے ان کو چلنا تھا اس میں ان کو روشنی ملے۔ اور تو کوہ سینا پر اتر آیا، اور تو نے آسمان پر سے ان کے ساتھ باتیں کی، اور راست احکام اور سچے قانون اور اچھے آئین و فرمان ان کو دیے، اور ان کو اپنے مقدس سبت سے واقف کیا، اور اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ان کو احکام اور آئین اور شریعت دی، اور تو نے ان کی بھوک مٹانے کو آسمان پر سے روٹی دی، اور ان کی پیاس بجھانے کو چٹان میں سے ان کے لیے پانی نکالا، اور ان کو فرمایا کہ وہ جا کر اس ملک پر قبضہ کریں جس کو ان کو دینے کی تو نے قسم کھائی تھی، لیکن انہوں نے और हमारे बाप दादा ने घुमंड किया और गर्दनकश बने और तेरे हुक्मों को ना माना और फरमानबरदारी से इनकार किया और तेरे अजायब को जो तूने उनके दरमियान किए याद ना रखा, बल्कि गर्दनकश बने और अपनी बगावत में अपने लिए एक सरदार मुकरर किया ताकि अपनी गुलामी की तरफ लौट जाएं। पर तू वो खुदा है जो रहीमो करीम, मुआफ करने को तैयार और कहर में धीमा और शफकत में गनी है। सो तूने उनको तर्क ना किया, पर जब उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाकर कहा, ये तेरा खुदा है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया और यूं गुस्सा दिलाने के लिए बड़े बड़े काम किए, तो भी तूने अपनी गुनागुन रहमतों से उनको बियाबान में छोड़ ना दिया, दिन को बादल का सतून उनके ऊपर से दूर ना हुआ ताकि रास्ता में उनकी राहनुमाई करे और ना रात को आग का सतून दूर हुआ ताकि वो उनको रोशनी और वो रास्ता दिखाए जिससे उनको चलना था। और तूने अपनी नेक रूह भी उनकी तरबियत के लिए बख्शी और मन को उनके मुंह से ना रोका और उनको प्यास बुझाने को पानी दिया। 40 बरस तक तू बियाबान में उनकी परवरिश करता रहा, वो किसी चीज के मोहताज ना हुए, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनके पांव सूझे। इसके सिवा तूने उनको ममलकतें और उम्मतें बख्शी जिनको तूने उनके हिस्सों के मुताबिक उनको बांट दिया, चुनाचे वो सहोन के मुल्क और शाह हसबोन के मुल्क और बसन के बादशाह औज के मुल्क पर काबिज हुए। और तूने उनकी औलाद को बढ़ाकर आसमान के सितारों की मानिंद कर दिया और उनको उस मुल्क में लाया जिसकी बाबत तूने उनके बाप दादा से कहा था कि वो जाकर उस पर कब्जा करें। सो उनकी औलाद ने आकर इस मुल्क पर कब्जा किया और तूने उनके आगे इस मुल्क के बाशिंदों यानी केनानियों को मगलूब किया और उनको उनके बादशाहों और इस मुल्क के लोगों समेत उनके हाथ में कर दिया कि जैसा चाहें वैसा उनसे करें। सो उन्होंने फसीलदार शहरों और जरखेज मुल्क को ले लिया और वो सब तरह के अच्छे माल से भरे हुए घरों और खोदे हुए कुओं और बहुत से अंगूरस्तान और जैतून के बागों और फलदार दरख्तों के मालिक हुए। फिर वो खाकर सेर हुए और मोटे ताजा हो गए और तेरे बड़े एहसान से नहायत हज उठाया, तो भी वो नाफरमान होकर तुझसे बागी हुए और उन्होंने तेरी शरीयत को पीठ पीछे फेंका और तेरे नबियों को जो उनके खिलाफ गवाही देते थे ताकि उनको तेरी तरफ फिरा लाएं कत्ल किया और उन्होंने गुस्सा दिलाने के बड़े बड़े काम किए। इसलिए तूने उनको उनके दुश्मनों के हाथ में कर दिया जिन्होंने उनको सताया और अपने दुख के वक्त में जब उन्होंने तुझसे फरियाद की तो तूने आसमान पर से सुन लिया और अपनी गुनागुन रहमतों के मुताबिक उनको छुड़ाने वाले दिए जिन्होंने उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया। लेकिन जब उनको आराम मिला तो उन्होंने फिर तेरे आगे बदकारी की, इसलिए तूने उनको उनके दुश्मनों के कब्जा में छोड़ दिया सो वो उन पर मुसल्लत रहे। तो भी जब वो रजू लाए और तुझसे फरियाद की तो तूने आसमान पर से सुन लिया और अपनी रहमतों के मुताबिक उनको बार बार छुड़ाया, और तूने उनके खिलाफ गवाही दी ताकि अपनी शरीयत की तरफ उनको फेर लाए, पर उन्होंने घुमंड किया और तेरे फरमान ना माने बल्कि तेरे अहकाम के बरखिलाफ गुनाह किया, जिनको अगर कोई माने तो उनके सबब से जीता रहेगा और अपने कंधे को हटाकर गर्दन कश बन गए। और ना सुना तो भी तू बहुत बरसों तक उनकी बर्दाश्त करता रहा और अपनी रूह से अपने नबियों की मार्फत उनके खिलाफ गवाही देता रहा, तो भी उन्होंने कान ना लगाया, इसलिए तूने उनको और मुल्कों के लोगों के हाथ में कर दिया, बावजूद इसके तूने अपनी गुनागुन रहमतों के बायस उनको नाबूद ना कर दिया और ना उनको तर्क किया, क्योंकि तू रहीमो करीम खुदा है। सो अब ए हमारे खुदा, बुजुर्ग और कादिरो मुहीब खुदा, जो अहदो रहमत को कायम रखता है, वो दुख जो हम पर और हमारे बादशाहों पर और हमारे सरदारों और हमारे काहिनों पर और हमारे नबियों और हमारे बाप दादा पर और तेरे सब लोगों पर असोर के बादशाह के जमाना से आज तक पड़ा है, सो तेरे हजूर हल्का ना मालूम हो, तो भी जो कुछ हम पर आया है उस सब में तू आदिल है, क्योंकि तू सच्चाई से पेश आया पर हमने शरारत की, और हमारे बादशाहों और सरदारों और हमारे काहिनों और बाप दादा ने ना तो तेरी शरीयत पर अमल किया और ना तेरे अहकाम और शहादतों को माना जिनसे तू उनके खिलाफ गवाही देता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी मुमलकत में और तेरे बड़े एहसान के वक्त जो तूने उन पर किया और इस वसी और जरखेज मुल्क में जो तूने उनके हवाला कर दिया तेरी इबादत ना की और ना वो अपनी बदकारियों से बाज आए। देख आज हम गुलाम हैं, बल्कि उसी मुल्क में जो तूने हमारे बाप दादा को दिया कि उसका फल और पैदावार खाएं, सो देख हम उसी में गुलाम हैं। वो अपनी कसीर पैदावार उन बादशाहों को देता है जिनको तूने हमारे गुनाहों के सबब से हम पर मुसल्लत किया है, वो हमारे जिस्मों और हमारे मुवैशी पर भी जैसा चाहते हैं इख्तियार रखते हैं, और हम सख्त मुसीबत में हैं। इन सब बातों के सबब से हम सच्चा अहद करते और लिख भी देते हैं, और हमारे उम्रा और हमारे लावी और हमारे काहिन उस पर मोहर करते हैं,